إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا، کوئی تیرا زور، تیری قوت، تیری طاقت میرے بندوں پہ تو غالب نہیں آ سکے گا جو میرے بندے ہوں گے. بندے تو اللہ کے سارے ہی ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا. لیکن آپ مثلاً آپ کو کوئی کہے کہ آپ کے مثلاً میں آپ کے بچے کو بہکا دوں گا، تو آپ کا میں آپ کے بچے کو آپ سے دور کر دوں گا، تو آپ کہتی ہیں آگے سے نہیں، جو میرا بچہ ہوگا نا وہ کبھی نہیں ایسا کرے گا. تو بچے تو سارے ہی آپ کے ہیں، لیکن مطلب آپ کا ہوتا ہے آپ کو مان ہے ایک کہ جو میرا ہوگا نا، جو میرے سے وفادار، میرے سے سنسیئر، تو جو اللہ کے بندے ہیں عبادی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کے ان اپنے بندوں کو ایک شرف دیا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو کہہ دے یہ میرے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے نا. ویسے تو سارے ہی اللہ کے بندے، لیکن یہ خاص ہے نا، یہ وہ اللہ کے وفادار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے. تو یہ آنر ہے ان کے لیے، ان جو میرے بندے ہیں نا ان پہ تیرا کوئی زور نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ زور چلے گا جو اللہ کی بندگی سے نکل جائیں گے، جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائیں گے، اس کی غلامی سے نکل جاتے ہیں، وہ اللہ کے بندے نہیں، وہ پھر شیطان کے بندے ہی بن جاتے ہیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب کار ساز ایسے بندوں کے لیے جو اللہ کے بندے ہیں. اب انسان سوچتا ہے نا ہائے میں کیسے بچوں، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان کافی ہے، وکیل ہے، یعنی اللہ ان کے سارے افیئر، سارے کام اپنے ہاتھ میں لے لے گا، وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. جو اللہ کے بندے بن کے رہیں گے نا، شیطان کے راستے سے الگ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا ذمہ لیتا ہے، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے، ان کو نہیں کسی اور کی ضرورت. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ کی عباد، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آنے والے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کا کیسے وکیل بنتا ہے، کارساز بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کافی ہی ہے، اب ان کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جو یوز جی کہتے ہیں آہستگی، نرمی سے چلانا، نرمی سے آہستگی سے چلاتا ہے پل کو سمندر میں. اب یہ بات کیوں آ گئی، ایک دم سے دوسرا ٹاپک کیوں آ گیا، یعنی تم شیطان کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ وہ تو تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے دیکھو یہ کر رہا ہے، پھر بھی تم اس کے پیچھے چلو گے شیطان کے. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتیوں کو چلاتا ہے. کیوں، کشتیوں کی بات اتنی کیا امپورٹنٹ ہے؟ ہاں، اس لیے کہ اس سے ہمارے رزق وابستہ ہے. صرف سیر کی بات نہیں ہو رہی کہ کروز چل رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر سوچیں کہ ہاں تو کروز نہ بھی چلتا تو کیا فرق پڑتا. نہیں، آج بھی پوری دنیا کی ورلڈ ٹریڈ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اسی ذریعے سے ہو رہی ہے، باہر کے ذریعے، سمندروں سے. آپ دیکھیں، آپ شیلفز پہ جائیں، دیکھیں ہر چیز آپ کو میڈ ان چائنا، میڈ ان فلان، دور دور کے ملکوں کی، وہ کہ جہازوں میں آ رہی چیزیں، وہ سب شپ سے آ رہی ہیں. اب پیچھے کووڈ کے اندر کئی شپس کو انلوڈ کرنا یہ مشکل ہوا ہوا تھا، لوگ نہیں مل رہے تھے تو چیزوں کی کمی ہو گئی تھی، کہتے چیزیں ہی نہیں پیچھے سے آ رہی، کیونکہ جہازوں میں نہیں آتی چیزیں، ہیں سب شپ سے آتی ہیں. تو تبتغوا من فضلی، تاکہ تم تلاش کرو اس سے فضل. تو اللہ ہی تو تمہارے رزق روٹی اور اس کا انتظام کرتا ہے، تجارت کا تمہارا انتظام کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اور دوسری ضروریات زندگی تمہاری اس سے پوری ہوتی. تو یہ خود ہی نہیں کشتیاں چل رہی، اب اس وقت تو صرف کشتیاں ہی چلتی تھیں، اگر آج جہازوں کو بھی لے لیں تو جہاز بھی اللہ کے فضل سے ہی چل رہے ہیں نا. اس وقت ان کو جہازوں کی تو نہیں مثال دی جا سکتی تھی، اگر تھوڑا بہت کوئی سامان جہازوں پہ، اول تو سب سے زیادہ سامان آتا ہی شپ سے، لیکن اگر تھوڑا بہت آتا بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے فضل سے چلتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، انسان کی انسان کا رائٹ نہیں ہے. فضل ہوتا ہے ایکسٹرا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تمہارے لیے فضل و کرم ہے اس کا. انہو کانا بکم رحیما، اس لیے کہ وہ تمہارے پر رحم فرمانے والا ہے، اس لیے اس نے تمہارے لیے یہ انتظام کیا. شیطان تھوڑی تمہارے لیے کر رہا ہے، ये सब कौन चला रहा है? तुम्हारा रब चला रहा है, उसको छोड़ के तुम इसके पीछे जाते? अल्लाह हु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। वइज़ा मस्सकुम अद्दुर्र, और जब छू जाती है तुमको तकलीफ, फिल बहर, समंदर में, तो तुम्हारा हाल ये होता है कि जब एक मंजर तुम्हारे सामने लाया गया, और ये बात भी कई दफा कुरान करीम में आ चुकी है पहले भी, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि तकरार का मकसद ये होता है, रेपिटिशन का मकसद ये होता है कि आपको इस बात की याद दहानी कराई जाए कि आपके अंदर जो है ना, अंदर एक अल्लाह की पहचान है। जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है समंदर में, दल्ला मन तदाउना इल्ला इया, दल्ला गुम, जैसे दौलीन कहते हैं ना गुमराह, तो दल्ला गुम हो जाते, मन तदाउना जिनको तुम पुकारते हो सब गुम हो जाते। कोई ये नहीं कहता ओ जीसस सेव मी, तो हर कोई कहता ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ गॉड, ऐसे मुंह से निकलता। इल्ला इया, सिवाय उसके, और सब गुम हो जाते। जितनों को भी कोई पूछता है, जब समंदर में मसलन कश्ती भंवर में फंस जाती है, कोई समंदर में ऐसा तूफान आ गया, जहाज जो है ना वो उस वक्त क्या लग रहा होता है, ऐसे जैसे तिनका है, जैसे तिनका पानी में होता है ना, ऊपर से कभी दिखाते हैं वो इसमें जहाजों को, यहाँ आप जब एरोप्लेन में जा रहे थे तो नीचे जहाज कैसे नजर आते हैं, उनकी लाइट, या ऐसे लगता है डॉट है वो, इतना सा जो जहाज है इतने बड़े समंदर के अंदर, चारों तरफ पानी है, उसके अंदर कुछ हैसियत नहीं रखता, जो पानी उसको उड़ा उड़ा के किधर जिधर चाहे फेंके, उसको उल्टा दे। जब ऐसा तलातम आता है, ऐसा तूफान आता है समंदर के अंदर, इंसान को लगता है हाय अब नहीं मेरा कोई, अब यहां कोई नहीं बचाने वाला, जब वो ना अपने आप को हेल्पलेस फील करता है ना, बेबस, कि अब तो कोई भी नहीं है यहां पे, नहीं कोई हेल्प, ना कोई 911 है, ना यहां पे कोई और है, मुझे कोई नहीं बचाने वाला, तब उसकी जो फितरत है, जो अंदर अल्लाह ताला ने प्रोग्राम किया हुआ है, एनग्रेव किया हुआ है, उसके अंदर एक अल्लाह की पहचान, तब वो एकदम बोलता है ओ गॉड। पैनिक होता है ना इंसान, यहां जब ऐसी किसी मुसीबत में फंस जाता है, उसको लगता है ना अब नहीं मैं इसे निकल सकता, अब सब बेबस है, मैं खुद भी बेबस हूं और मेरी कोई हेल्प भी नहीं, तब उसको कोई और नहीं याद आता। तब दिल जो है हलक में आ रहा होता है, सांस जो है वो रुक रही होती है, इंसान को मौत सामने नजर आ रही होती है, उसको लगता है बस अभी गया और अभी गया, यकीन जाने तब कोई और नहीं याद आता। ठीक है, आपको समंदर में, आपने शायद कभी भी ऐसा सफर ना किया हो, और अल्लाह ना करे कि कभी भी ऐसी हालात में से आप गुजरे, लेकिन कभी जहाज में तो ऐसा हो जाता है, जब जहाज में टर्बुलेंस होती है, इस कदर परेशानी हो जाती है, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे बस अभी जहाज गिरने लगा, उस वक्त तो सारों को कलमा याद आ जाता है। इवन खबरों में कई दफा दिखाते हैं, जब जलजले आते हैं तो लोगों को दिखाते हैं वो घरों से निकल आए, तो फिर खबरों वाले भी क्या कह रहे थे, वो कलमा तैयबा का वर्द करते हुए बाहर आ गए, उस वक्त कलमा याद आ गया, अभी से पहले कोई भी नहीं कलमा याद, और उससे पहले तो दाता और फलां जमेर और फलां या अब्दुल कादिर जिलानी और फलां फलां जिया दाता गंज बख्श, या पता नहीं क्या क्या किस किस के नाम लेते हैं इससे पहले, लेकिन उस वक्त बस कलमा याद आ गया। इंसान की फितरत है, इससे पता चलता है कि अंदर एक खुदा, एक खुदा की गवाही मौजूद है। फलम्मा नज्जाकुम मिनल बर, लेकिन इंसान का हाल यह है कि जब वो निजात देता है तुमको, यानी कौन, अल्लाह ताला तुम्हें निजात देता है खुशकी की तरह, तुम मुंह मोड़ जाते हो उससे, तुम सोचते हो अब मैं सेफ हो गया, अब नहीं मुझे खुदा की जरूरत, अब क्या, वो तो वहां पे मुश्किल में थे, मुसीबत में थे, बल्कि कई लोग तो ये भी सोच रखते हैं कि हमें अल्लाह की तरफ आने की क्या जरूरत है, वो जो गरीब लोग हैं मुश्किलों में मुसीबतों में, अगर वो अल्लाह की तरफ आए, हमारे पास इतना पैसा है, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिजनेस भी अच्छा फ्लरिश कर रहा है, मजे करें, हमें अल्लाह अल्लाह करने की क्या जरूरत है, अल्लाह अल्लाह तो वो लोग करें, किसी मुसलमान ने ही अपने मुंह से कहा, तब मुझे पता चला कि ये भी लोगों के व्यूज होते हैं, कि वो समझते हैं कि जब हमारे पास सब कुछ है ना, तो अपने आप को बेनियाज समझता है इंसान, सेफ हो जाता है ना, जब वो जो खुशकी पे भी उतर आया तो उसको लगा कि अब तो मैं तूफान से बच गया, अब तो अल्लाह की जरूरत ही नहीं इसको, तो फिर एराज करने लगा, फिर उसको सारा भूल जाता है कि मैंने कभी अल्लाह को पुकारा भी था, वो मैंने मन्नतें मानी थी कि या अल्लाह मैं इतने नफल पढ़ूंगी, या अल्लाह तू मुझे एक दफा बचा ले, या अल्लाह तू नहीं बचाना, वो सब भूल गया। वह कान इंसानों कफूरा, इंसान है ही बड़ा ना शुक्र। इंसान ली रबी ही लकनूद, इंसान अपने रब का बड़ा ना शुक्र है। वाकई अल्लाह ताला ने सूरह आदियात में ये गिला किया कि इंसान अपने रब का ना शुक्र है, यानी इंसान अपने रब की शुक्र गुजारी की तरफ नहीं आता, इंसान अपने रब की नाशुक्री करता है। क्योंकि वो सोचता है कि मुझे अब रब की जरूरत ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो इंसान को अल्लाह ताला की भी समझता है कि मुझे जरूरत तब है जिस वक्त मैं किसी मुश्किल में हूं, जब मुश्किल से निकल जाऊं तो अब अल्लाह को कौन जाने और कौन पहचाने। नमाजें भी तब हैं जिस वक्त हम किसी मसले में, और उसके बाद नमाजें भी भूल जाती हैं। कुरान भी पढ़ रहे हैं तब कुरान पे कुरान खत्म हो रहे हैं, लोगों को भी बुला के कुरान पढ़वा रहे हैं, आयत करीमा भी पढ़वा रहे हैं। कब? जिस वक्त ये कि हमारे हम किसी मसले में फंस गए, हमारे घर में कोई परेशानी होगी, तब अल्लाह बड़ा ही याद आता है। वजीफे भी लंबे लंबे करते हैं, लेकिन जब सब ठीक हो जाता तो क्या समझते हैं, अब अल्लाह की जरूरत नहीं। इसी को तो नाशुक्री कहते हैं। नाशुक्री का रवैया होता कैसा है? नाशुक्री का रवैया ये होता है कि हाँ, इंसान ये हर वक्त सोचता रहे कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, या मुझे बहुत कम मिला है। और नाशुक्री का रवैया क्या है? हर वक्त शिकायती रवैया रखना। और नाशुक्री क्या है? अपनी नियमतों की बजाय दूसरों की जो नियमत है उसके ऊपर हर वक्त नजर रखना, उसके पास तो ये है मेरे पास तो ये नहीं, उसके पास ये है मेरे पास नहीं, अपनी नियमतें नहीं नजर आ रही। और नाशुक्री क्या है कि दिया अल्लाह ने और शुक्र किसी और का। जैसे औलाद के अंदर शैतान का साजा ना, एक ये भी था, ये मैं बात भूल गई उस वक्त आपको बतानी, कि औलाद के अंदर अल्लाह देता है औलाद, और कहना ये पीरा बख्श, पीरा दिता, रसूल बख्श, नबी ने दिया, रसूल ने दिया, ये नहीं, ये शैतान की शिरकत है औलाद में, ऐसे नाम रख लेना। तो इंसान को नेमत अल्लाह दे और वो शुक्र किसी और का अदा करे, कहीं और माथे टेके, ये भी नाशुक्री। और नाशुक्री ये भी है कि इंसान मुसीबत में तो अल्लाह को पुकारे और जब मुसीबत टल जाए तो अल्लाह को भूल ही जाए, बिल्कुल ही मुंह मोड़ ले। ठीक है, सही है कि आप उस वक्त बहुत ज्यादा दुआ करते हैं जिस वक्त कोई मुश्किल के अंदर होते हैं, बाद में उतनी ज्यादा दुआ नहीं हो रही वो तो ठीक है, लेकिन जुड़ा तो रहे। ये तो ना हो करे कि बिल्कुल मुंह ही मोड़ ले, एराजी कर ले। तो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, अफ अमिन तो, क्या तुम इससे बेखौफ हो गए हो? यखसीफा बिकुम जानिबल बर, कि वो तुम्हें धंसा दे खुशकी में। खुशकी में तुम आके समझ रहे हो तुम सेफ हो गए, तुम ना डर हो गए हो खुशकी में, जैसे वो कुछ नहीं कर सकता, वो समुद्रों में ही तुम्हें पकड़ सकता है, या जो तुम हवाओं में जहाज में होते हो उस वक्त ही तुम्हें डबो सकता है, या उस वक्त तुम्हें गिरा सकता है, वो चाहे तो जमीन जिधर तुम बैठे हो वो ही खुल जाए, उसके अंदर चले जाए इंसान। आप ऐसी वीडियोज हैं जिसके अंदर वो दिखाते हैं, एक दफा एक न्यूज आई थी, वो उन्होंने दिखाया कि एक लड़का अपने बेडरूम में था और नीचे से जमीन फटी, उसको पॉट होल कहते हैं, जमीन फटी और अंदर चला गया, सिंक हो गया अंदर ही, उस बेड समेत अंदर ही चला गया। तो इस तरह दुनिया के अंदर है वाकया। उसी तरह एक जहाज में एक बहुत ही हैरान कन खबर थी ये, कि जहाज में एक औरत जा रही थी और उसका शीशा बल्ला वाला पता नहीं कैसे टूटा उसकी खिड़की का, और आपको पता है वो औरत, सिर्फ वो अकेली औरत सक आउट हो गई अपनी विंडो से, मर गई। जाहिर ही बात है वो प्लेन से बाहर, जहाज आसमान में था, हवाओं में था, और चूंकि उसका प्रेशर इतना होता है तो वो सक कर लिया बाहर से उसने, हवा ने उसको, और वो नीचे गिर गई। अल्लाह आलम, अल्लाह ताला की क्या इसके अंदर थी, क्या किसी के साथ क्या उसकी बात थी कि अल्लाह ताला ने ये किया और दिखाया हम सबको भी। एक निशानी है अल्लाह की कि अल्लाह पकड़ सकता है तुम्हें कहीं पे भी। तुम क्या समझते हो तुम हवाओं में हो तुम सेफ हो, या तुम सोचते हो मैं जमीन के ऊपर हूं सेफ हूं, मैं अपने घर में हूं तो सेफ हूं। और ऐसी हमने खबरें सुनते हैं एक जहाज था वो गिरा, घर में लोग उसमें, उस जहाज के अंदर से तो लोग जो जो बेचारे दुनिया से गए तो गए, उनमें भी एक बच गया, लेकिन जिस घर के ऊपर वो गिरा उसमें सारे मर गए। वो अपने घर में बैठे हैं सोच रहे हैं हमारा यहाँ, हमें हम तो बिल्कुल सेफ है, हमें तो कुछ नहीं हो सकता, तुम ना डर होगा इससे, तुम समझते हो अल्लाह की ताकत सिर्फ वहां पे ही है समुद्रों में, तुम वहां से निकल आए तो बस अब तो किसी चीज की जरूरत नहीं। और इसके बारे में वो वाक्य आता है इकरमा का, इकरमा जिस वक्त फतह मक्का हुआ तो उस वक्त अबू जहल का बेटा इकरमा, तो वो भाग गया कश्ती में जाके बैठ गया कि मैं कहीं और चला जाऊंगा, मैं नहीं यहाँ पे रहूंगा, यहाँ पे तो मुसलमानों ने फतह कर लिया। तो कश्ती जो थी वो तूफान में फंस गई, इतने झोंके आए, ऐसे कश्ती हिल रही थी, कश्ती में जितने काफिर थे सब एक दूसरे से कहने लगे इस वक्त सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं बचा सकता, उसको ही पुकार। तो इकरमा ने दिल में कहा कि यही बात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे, यही बात तो वो कहते थे, अगर समंदर में सिर्फ वही काम आ सकता है तो खुश्की में भी फिर तो फिर वही काम आ सकता है। तो उन्होंने उस वक्त इरादा कर लिया कि या अल्लाह अगर मैं बच गया इस आफत से तो मैं सीधा आपसे सलम के हाथ पे जाके ईमान ले आऊंगा। तो फिर गए थे और फिर ईमान ले आए थे। तो वही रब है जो जमीन पे भी और आसमान में भी और खुश्की में भी और तरी में भी हर जगह वही रब है, और वो तुम्हारे पकड़ने पे कादिर है। तुम डर कैसे हो सकते, कैसे भूल सकते हो उसको जब तुम खुश्की पे उतर आते हो। और युरसिल अलैकुम हासिबा, वो चाहे तो खुश्की पे ही तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर दे, क्या आई नहीं थी कौमे लूत के ऊपर, परस्तों की बारिश हो सकती है, ओलों की बारिश देखी आपने कब, देखी होगी, ओले जब बरसते हैं वो पत्थरों की तरह लगते हैं। सुम्मा लाते जिद लकुम वकीला, फिर तुम्हें कोई वकील नहीं मिलेगा, कोई कारसाज नहीं मिलेगा, कोई हिफाजत करने वाला या इसे बचाने वाला इसे रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। वकील वो होता है जो इंसान की मदद करता है मुश्किल वक्त में, तो कोई तुम्हारा मददगार नहीं, कोई वकील वो होता है जो इंसान का मामले को अपने हाथ में लेके और उसकी हेल्प करता है, आप उसके ऊपर छोड़ देते हैं अपना मामला, तो तुम किसको पुकारोगे फिर तुम। अल्लाह ताला माफ कर दे हमें, इंसान समझता है समुंदर डबोता है, खुश्की जो है वो महफूज रखती है, नहीं खुश्की भी तुम्हें डबो सकती है, मौत समुद्रों में कम ही आती है, खुश्की पे ज्यादा आती है लोगों को, ये सारे जितने मर रहे हैं खुश्की पे ही मर रहे हैं, फिर भी इंसान कितना नादान है, तो कहाँ भाग के जा सकते हो अल्लाह से, तुम इधर रह के अल्लाह को भूल जाते हो, सोचते हो अल्लाह की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो हर दम हर जगह हर वक्त हर हाल में हर लम्हा उसकी जरूरत है, तुम कभी उससे बेनियाज थोड़ी हो सकते। अम अमिन तुम युईदा कुम्फी तारा था नुखरा, तुम इस से बेखौफ हो गए और लुटाए तुमको समंदर में दोबारा दूसरी मरतबा तुम्हें ले जाए। अब काम तो पड़ते ही रहते हैं, अब एक दफा तो इंसान जहाज में गया टर्बुलेंस हुई और उसने बड़ा कहा या अल्लाह अब तू मुझे बचा ले, अब तो मैं उतरूंगी तो मैं इतनी नेक बन जाऊंगी, या अल्लाह मैं तेरी सारी नाफरमानी छोड़ दूंगी, या अल्लाह मैं ऐसे करूं, उतरे सारा कुछ भूल गए, अब दोबारा क्या कभी जहाज में नहीं बैठना। इंसान सोचता है कि दोबारा नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हें दोबारा नहीं समुद्रों में ले जा सकता, एक दफा बच गया तो एक दफा काफी थी, एक दफा ही अल्लाह की जरूरत थी तुम्हें। अगर तुम ये समझते हो ना कि समुद्रों में ही जाके वो डबो सकता है और बस खुश्की में तुम महफूज हो, तो समुद्रों में भी दोबारा नहीं जाना क्या। फयुरसिला अलैकुम कासिफम मिनर रीह, तुम्हें फिर भेज दे तुम पर गरजने वाली तोड़ने वाली हवा में से, वो तुम्हारे ऊपर ऐसे कोई तूफानी हवाएं भेज दे, इससे क्या तुम बेखौफ हो गए, किसी भंवर में फंसा दे, किसी तूफान में फंसा दे, या टॉर्नेडोज आते हैं, आपने देखा है टॉर्नेडो जब आता है अल्लाह माफ करे, इंसान कहता है वो किस तरफ को रुख कर ले हमें क्या पता, और जिधर से गुजरता है वो भी तो तूफानी हवा है ना, जिधर से गुजरता है वाइप आउट कर देता है, छतें गिर जाती हैं, घर तबाह हो जाते हैं, उसके अंदर इतना कुछ होता है जो उड़ रहा होता है, इसीलिए वो कहते हैं ना इसमें जिन्नात है इसमें जी ऐसे है, क्योंकि वो वाकई ऐसे लग रहा होता है कि एक इतनी पावरफुल चीज और वो ऐसे घूम रही है, अब आपको पता ही नहीं वो कहां जाएगी। अब हमने एक कौसिफा पढ़ा और एक आसिफा भी पढ़ा है, आसिफा आइन के साथ जो है वो तुंद तेज हवा आंधी, जो जमीन पे चाहे चले जाए, खुश्की पे चाहे तरी पे, सॉरी खुश्की पे चले, कौसिफा है जो समुद्रों पे चलती है, मगर दोनों हवाएं तबाह करने वाली हैं, आसिफा भी और कौसिफा भी। तो जो टॉर्नेडोस होते हैं, आप उसको हासिबा कह लें चाहे, जिसके अंदर पत्थर भी हैं, जिसमें इतना कुछ उड़ा होता है, इवन जानवर कई दफा उड़े होते हैं, गाड़ियां, पत्थर, पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें उड़े होते, कैसे बगोला कहते हैं उसको, पता नहीं। वो टॉर्नेडो जो होता है, आपने देखा होगा किस तरह वो जिधर जिधर से जाता है तबाही मचाता हुआ जाता है, जिधर से जाता है, और इंसानों को वो प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि आप ये किधर से जाएगा। ये पता बता सकते हैं कि टॉर्नेडो आ रहा है, लेकिन ये नहीं उनको पता कि किधर घूमेगा, किधर, तो किसके हाथ में है ये। और जो तूफानों में भंवर होते हैं, जो कासिफा है, तो उसका जो हवाएं वहां पे चलती हैं, टा उठा के चीजों को फेंकती, जो तूफानी हवाएं समुद्रों में होती हैं, देखा है आपने, जिसको कहें सुनामी, जैसे कितनी वेव्स कितनी ऊपर चली जाती हैं, वायोरे का कुम बीमा का फर तुम फिर गर्क कर दे तुमको इस वजह से कि जो तुम नाशुक्री करते। इंसान नाशुक्री से फिर भी नहीं हटता, ये समंदर चढ़ जाए तो ऐसा सुनामी आए और गर्क कर दे सबको, तो क्या करोगे? फिर भागते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। और इंसान ना नाशुक्री, हर जगह नाशुक्री कर रहा है। आप ये देख लें, ये नाशुक्री ही है कि हमें जिंदगी, इतनी कीमती जिंदगी अल्लाह ताला ने दी हुई है, और इसकी ये नाशुक्री है ना कि हम उसकी जिंदगी को किन कामों में गुजार रहे हैं। उसमें भी देखे, वो ही मैंने आपको जो कहा कि नाशुक्री ये भी होती है कि जिसने नेमत दी है उसका एहसान ना मानना, उसकी कदर ही ना जानना। तो ये नाशुक्री का रवैया कि जब हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की इताअत की बजाय किसी और की इताअत शुरू कर दें, इधर झुकने की जगह कहीं और झुक रहे हैं, इधर नहीं फरमा बरदारी करते कहीं और की करते, उसकी फिक्र नहीं जिसने हमें जिंदगी दी कि वो किससे खुश होता है, हमें किसी और को खुश करने की फिक्र है। फिर कुरान की भी हम नाशुक्री करते हैं। इंसान को कहा ना कि इंसान भी लकनूद, और यहां पे ये अल्लाह ताला ने फरमाया कान इंसान कफूर है, वाकई कफूर है, नाशुक्र है। कुरान की देखे, वैसे मुंह से कहते हैं हाँ कुरान बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है, आपने क्या शुक्रगुजारी की इस नेमत की कि इसको उठा के एक तरफ रख दिया, और कहते हैं हमारी जिंदगी में टाइम ही नहीं है कुरान के लिए, रमजान आएगा तो पढ़ लेंगे, ये नाशुक्री नहीं तो और क्या है? ना इसको पढ़ते हैं, ना इसको सीखते हैं, ना इसको समझते हैं, ना इसको अमल के काबिल समझते हैं, ना इसके ऊपर अमल करने को पसंद करते हैं, तो और नाशुक्री क्या होती है? सब नाशुक्रियां ये। तो अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, जितनी भी दी हैं, चाहे वो दीन है, ईमान है, इस्लाम है, इस्लाम के ऊपर भी चलना नहीं है, बस इस्लाम को बस लिखने के लिए है, और यहाँ मुसलमान हमारा आपको पूछे कि भाई आपका रिलीजन क्या है या आप कौन होते हैं, तो हम मुस्लिम है बस, ये यहाँ आपने अपना नाम आयशा फातिमा अहमद मोहम्मद रख लिया बस काफी है। अब तो ये भी नाम रखने पसंद नहीं करते, अब तो और मॉडर्न किस्म के नाम है कहते हैं, वो वाले नाम रखे जो ज्यादा मतलब इनके तरह के हों। अब ये वाले नाम तो पुराने हो गए हैं, ये तो हमें अच्छे ही नहीं लगते, जिसे पता ही ना चले कि मुसलमान है भी या नहीं, वो वाले नाम रखने पसंद करते। तो नाशुक्री और क्या होती है फिर? चीजें तुम्हें, नेमते तुम्हें तुम्हारा रब दे और चलो तुम शैतान के रास्ते पे, ये नाशुक्री नहीं है? दे तुम्हें रिस्क अल्लाह और तुम खर्च करो शैतान की इताअत में, ये नाशुक्री नहीं है क्या? अल्लाह ताला ने तो जो माल और औलाद का बताया ना, ये बाकी इंसान की ये कमजोरियां हैं, माल भी और औलाद भी, वहीं से शैतान मैनिपुलेट करता है इंसान को, और हम नाशुक्रियां भी इनके अंदर करते हैं बहुत ज्यादा, बाकी चीजों में भी जब नाशुक्री का रवैया होता है, एक इंसान की नेचर ही नाशुक्री होती, तो हर जगह ही नाशुक्री करता है। नेमत अल्लाह ने कुरान दी हुई है, मुझे बताएं कितनी हमें कुरान की आयतें आती हैं और गाने कितने आते हैं हमें, कितना हम कुरान पढ़ते हैं और कितनी हम शैतान की आवाजों को सुनते और बोलते हैं। ثم لا تجدوا لكم علينا به طبيعا، پھر نہ تم پاؤ گے ہمارے مقابلے میں کوئی پیچھا کرنے والا، کوئی آ کے اللہ سے پوچھے گا نہیں اللہ تو نے کیوں ڈبویا، اللہ تو نے کیوں ایسا کیا، کوئی نہیں کہہ سکتا، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کمپنسیٹ کر کیونکہ تو نے یہ کیا نا ہمارے ساتھ، تو اب اس کو کمپنسیٹ کر کے دے. کوئی پیچھا کرنے والا نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور البتہ تحقیق عزت بخشی ہم نے آدم کی اولاد کو. اب یہ بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بنی آدم کو عزت بخشی ہے، ساری آدم کی اولاد کو عزت دی ہے. کیا یہ عزت کنڈیشنل ہے یا انکنڈیشنل ہے؟ یہ کنڈیشنل مطلب یہ ہے کہ جو فرما بردار ہے صرف اس کو عزت ملی، جو نافرمان ہے اس کو نہیں عزت ملی، یا جو مومن ہے اس کو عزت ملی اور جو کافر ہے اس کو نہیں عزت ملی. ایک لحاظ سے یہ انکنڈیشنل ہے، انسان ہونے کے لحاظ سے، فزیکلی جو انسان ہے نا اس کے لحاظ سے انکنڈیشنل ہے. کوئی بھی ہے، کافر ہے، مومن ہے، فزیکل سینس میں ساری سب کو ہی اللہ تعالیٰ نے تکریم دی. کیسے تکریم دی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو سجدہ کروایا فرشتوں سے. یہ کتنی بڑی تکریم ہے آدم کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے نا، اتنی عزت دی اس کو کہ فرشتوں سے سجدہ کرایا. اور بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، آگے ذرا دیکھ لیتے ہیں ان باتوں کو دیکھ کے، پھر اس کے بعد میں بتاتی ہوں پوری لسٹ آپ کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو سوار کیا خشکی میں اور سمندر میں، یعنی اس کو ہم نے ایسی سواریاں عطا فرمائی جو خشکی میں بھی چلتی ہیں اور سمندر میں بھی چلتی ہیں. یعنی کوئی اور جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کو سواریاں عطا کی ہوں اللہ تعالیٰ نے. آپ نہ بکری کو گائے کی پیٹ کے اوپر سواری کر کے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، آپ ایک چھوٹی مچھلی کو کسی ویل مچھلی کے اوپر سواری کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، آپ مثلاً کہ کسی بندر کو کسی گھوڑے کے اوپر سواری کرتے ہوئے نہیں دیکھتی. یہ صرف انسانوں کے لیے سواریاں، انسانوں کے پاس جہاز ہیں، ٹرینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، اگر چلو آج کے زمانے میں یہ ہیں، لیکن اس سے پہلے خچر تھے، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، ان کے اوپر عام سواریاں ہوتی تھی اور سمندروں میں کشتیاں بھی چلتی تھیں. تو یہ ساری سواریاں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے بنائی. وہ اس کو پیدل نہیں چل کے جانا پڑتا ہر جگہ، اس کو سمندروں میں تیر تیر کے نہیں دوسری جگہ پہنچنا پڑتا، باقی ساری چیزیں دیکھو تیر کے پہنچتی ہیں اور ان کو چل کے جانا پڑتا ہے. شیر ہیں، چیتے ہیں، کوئی اور چیزیں ہیں، وہ چل چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. پرندے ہیں، وہ مائگریٹ کرتے ہیں، ان کو اڑ اڑ کے جانا پڑتا ہے، ان کے لیے کوئی ہوائی جہاز نہیں ہے جن کو ان کو لے کے ادھر سے ادھر جائیں. کبھی آپ نے سوچا کہ انسان کے لیے یہ ساری سواریاں بنائیں؟ کیوں؟ اللہ نے اس کو تکریم دی ہے نا، عزت دی ہے سب انسانوں کو. اور رزقناہم من الطیبات، اور رزق دیا ہم نے ان کو طیب، جو انسان کھاتا ہے نا ویسی کسی اور مخلوق کی وہ نہیں ہے خوراک. ایون جنات بھی جو ہیں وہ انسان جو کھاتا ہے اس کی جو ہڈیاں ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے استنجا نہ کیا کرو، یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے، تو اسے استنجا کرنے سے منع کیا ہڈیوں سے، تو وہ ہڈیاں کھاتے ہیں. ہم اس میں سے اچھی چیز کھاتے ہیں، گوشت ہم کھاتے ہیں، یا ہم جو بھی مثلا کیلا ہے اس کا چھلکا نہیں ہم کھاتے، اندر سے کیلے کو کھاتے ہیں. ہر ایک چیز کی جو اچھی چیز ہے اس کے اندر، جو ستھری چیز ہے اس میں، جو پاکیزہ چیز ہے اس کے اندر، جو زیادہ نیوٹریشیس ہے اس کے اندر، وہ ہم کھاتے ہیں انسان سارے. جبکہ باقی حیوانات ہیں وہ کوئی چھلکے کھا رہا ہے، کوئی بھوسا کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، پھر انسان جو ہے ان میں سے گلی سڑی چیز نہیں کھاتا، گندی چیز نہیں کھاتا، بدبودار چیز نہیں کھاتا، خراب ہوئی ہوئی چیز نہیں کھاتا، باقی مخلوقات جو بھی مل جائے وہ کھا لیتے. تو فضیلت دی اللہ نے انسان کو، دیکھیں تکریم دی، عزت دی. پھر انسان کے لیے کتنی ورائٹی ہے کھانوں میں، آپ باقی چیزیں وہ ہی کھاتی ہیں. اب گائے کو دیکھو وہ بھوسا ہی کھائے گی، وہ گھاس ہی کھائے گی، اور تھوڑی ہے اس کے لیے کہ آج اس کے لیے کوئی پکوڑے بن رہے. یا آپ دوسری چیزوں کو دیکھ لیں، ان کے اندر بھی اب شیر ہے، وہ اس کو وہ شکار ہی کرتا ہے، وہ گوشت ہی کھاتا ہے. کسی دن وہ یہ نہیں کہتا وہ گوشت نہیں میرا دل کر رہا، دال کھاتا ہوں، سبزی کھاتا ہوں. انسان دال، سبزیاں، गोश्त, फिर गोश्त में भी कितनी वैरायटी, कहीं मछली है, कहीं मुर्गी है, कहीं बत्तख है, कहीं ये ऊंट है, कहीं कितनी वैरायटी है आपके पास। फिर उसके बाद वो तो वैसे ही खा लेते हैं, उनको कुछ पकाते नहीं, छीलते नहीं, काटते नहीं, मुजैन नहीं उसको करते। आपके ये है कि कितने मसाले आपके किचन में जाकर देखें तो पूरी पूरी कैबिनेट्स मसालों से भरी हुई। कितने मसाले डालते हैं, हर चीज का अलग जायका, हर चीज का अलग मजा, हर चीज की अलग न्यूट्रिशन, वैरायटी कितनी है हमारे पास। मीठा खाते हैं तो वो अलग तरह का, नमकीन खाते हैं अलग तरह का, स्पाइसी खाते हैं अलग तरह का, खट्टा खाते हैं अलग तरह का, पीने में भी कितने जूसेस, कितने और मशरूबात, कितना कुछ तुम्हारे लिए अल्लाह ने रखा। वो कौन है? अल्लाह है जो करने वाला है। तुम्हें अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी, वो तुम्हारी इज्जत उतारना चाहता है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी, तुम उसकी तरफ छोड़ के तो शैतान के रास्ते पे जाते। उसने तो ठानी हुई है कि मैं इसको बेइज्जत करके रहूंगा। अल्लाह ताला तुम्हारा इकराम करता है और तुम नाशुक्री करते हो, तुम उसी की नहीं मानते। अफद्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफदीला, और फजीलत दी हमने इनको, किन को, बनी आदम को, बहुत सारों से पे अपनी मखलूक में से फजीलत देना हमने बहुत सारी अपनी मखलूक में, बनी आदम को जो इज्जत दी है ना, वो किसी और को नहीं मिली। क्या इज्जत दी, जैसे मैंने आपको एक बताया, अशरफुल मखलूकात बनाया इंसान को, उसको सारी मखलूक में सब, ये चंद एक चीजों का यहां पे जिक्र किया गया, जिसमें सवारियां इसको दी, जिसमें रिज्क इसको तय्यबात में से दिया, ये किसी और के लिए भी नहीं है। इसको तकरीम दी, इसको देखिए, मलाइका ने किसी और मखलूक को सजदा किया है क्या? किसी को भी नहीं किया, और मलाइका सबसे टॉप पे है, नूरी मखलूक है। जब उन्होंने सजदा कर लिया तो बाकी सबकी तरफ से भी एक तरह से हो गया, एक इज्जत की बात हो गई। ये सजदा ताजीम ही था, इबादत का नहीं था, ताजीम का सजदा था, इज्जत का सजदा था। अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी इंसान को, सबसे अशरफ मखलूक जो मलाइका, उनसे सजदा करा के। तो इसका मतलब जो झुकने वाला है वो बड़ा होता है कि जो जिसके आगे झुका जाए वो बड़ा होता है। तो इंसान को फरिश्तों पे भी फजीलत अता फरमा दी, और क्या चाहिए? कितनी इज्जत दी तुम्हें, इससे पता चलता है कि कभी इंसानों को डिस्ग्रेस ना करें, यानी इंसानों को ऐसी जैसे खंजीर या कुत्ता या इस तरह कहने की जरूरत नहीं है। इंसान की इज्जत अल्लाह ने दी है उसको, उसको डिस्ग्रेस मत करें, क्योंकि तो जिसको अल्लाह ने इज्जत दे दी आप उसको जलील करेंगे तो ये तो शैतान का काम है। यही बात, और किसी को भी दुश्मनी में भी या झगड़ों में भी ऐसी बातें ना कहे, क्योंकि वलकद करमना, हमने तकरीम दी बनी आदम को, अल्लाह ने दी हुई है, किसी और ने नहीं दी, अल्लाह ने इज्जत दी है। तो बनी आदम सारे के सारे इंसान इज्जत के काबिल है, और फिर और किस चीज में अल्लाह ताला ने फजीलत दी है और इज्जत दी है? सूरत में आप देखें, सारे बाकी चौपाए चार टांगों पे चलते हैं, इंसान जो है वो दो पे चलता है और खड़ा होता है, अपराइट खड़ा होता है, सीधे खड़े होने में उसकी इज्जत है। वो घिसट घिसट के, रींग रींग के जमीन पे नहीं चलता जैसे बाकी चीजें चलती हैं, स्नेक है या स्नेल्स हैं या वर्म्स हैं, ये सारे इस तरह जमीन के ऊपर घिसट के या स्लाइड करते हैं, ऐसा नहीं है। और इंसान का साइज भी इतना मुतवाजन रखा है, ऐसा नहीं कि चूंटी के बराबर रख दिया कि सारे अपने पैरों के नीचे रोंद रहे हो, फिर हाथों से पकड़ के खाता है, ऐसे नहीं कि जमीन से मुंह जमीन पे करके जैसे बकरी गाय वगैरह खाती है वैसे नहीं खाता, हाथ से पकड़ के ऊपर अपने मुंह तक लेकर आता है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला ने जो इसको इज्जत दी है और जो फजीलत दी है वो ये कि अकल इसको अता फरमाई, सोचने समझने की सलाहियत दी इसको, फिर अल्लामहुल बयान इसको बोलना सिखाया। सारे जानदार आवाजें निकालते हैं, बेमानी आवाजें, बेढंगी आवाजें जिनकी कोई समझ ना है। इंसान की आवाज जो है वो उसके अंदर कुछ सब्सटेंस है, कोई बात है, और फिर इसको गौर व फिक्र करने की, तदब्बुर करने की, तहकीक करने की सलाहियत दी, रिसर्च करने की सलाहियत दी। दूसरी मखलूकात तो ये नहीं कर सकती, उनके पास इतनी अकल ही नहीं है, वो आवाजें भी निकालती हैं, उनकी आवाजें कुछ कोई पल्ले पड़ने वाली नहीं है, उनकी अकल भी लिमिटेड है। लेकिन अगर इंसान अपने आप को गिरा लेता है और वो जो अल्लाह ने उसको जो तकरीम जिन चीजों में दी है उन चीजों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, जैसे अल्लाह ताला ने उसको इकराम दिया, वो मसलन जैसे मैंने आपको बताया कि शैतान ये काम करवाता है, जो मैंने आपको कभी गंदे बुरे काम बताए कि इतने घिनौने काम करवाता है, वो कामों को करने पे इंसान अगर आ जाता है तो वो क्या करता है, असल में वो अपने आप को उस इज्जत वाले मकाम से गिरा रहा है। और जब इंसान गिराता है तो ये शैतान का एजेंडा है कि इसको गिराए, अल्लाह की नजरों में भी गिर जाए और अपने मकाम से भी गिर जाए, जो अल्लाह ने इसको इज्जत का मकाम दिया। जब वो अपने आप को गिरा देता है ना, तो वो असफल उस्साफिनीन हो जाता है, यानी हैवानों से भी बदतर हो जाता है। इसलिए फिर मैं आपको कहती हूं कि जो रूहानी तौर पे इंसानों में बेहतर वो इंसान है जो अल्लाह ताला पे ईमान रखने वाला और साले अमल करने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बईमना में, इन्नल लदीना आमनू अलाइकुम खैरुल बरिया, और जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं, कुफर करने वाले हैं, उनको शरुल बरिया का के सारी मखलूक में सबसे बुरे, बल्कि उनको फरमाया सूरह आराफ में उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये तो चौपायों की तरह है बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं, ये चौपायों से भी गए गुजरे हैं, यानी जानवर भी एक जितनी छोटी सी उसकी अकल है वो उसमें भी अपने अल्लाह को अपने रब को पहचानता है, अपने खालिक को पहचानता है और उसकी अताअत करता है। तुम्हारी अकल का क्या फायदा कि अगर तुम्हें अकल मिली भी लेकिन तुम अपनी अकल को एक तरफ छोड़ दिया और तुम इतने गिर गए, अपने मालिक के नाशुकरे बन गए, उसकी पहचान तुमने खो दी, उसको भूल गए, तो तुम तो जानवर से भी बदतर हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, बाज सवारियां अपने सवारों से बेहतर है, सवारी अल्लाह का जिक्र करती, सवार ऊपर बैठा उसको अल्लाह ही नहीं याद है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो फजीलत दी है रूहानी तौर पे वो कंडीशनल है, या इताअत करोगे तो वो वाली फजीलत है, लेकिन जो आपको फिजिकली एज इंसान होने के बतौर इंसान आपकी जो फजीलत है वो तो सबको ही दी है, काफिर मोमिन हर एक को फजीलत हासिल है। और उनमें मैंने आपको ये सारी बातें बताई, उसकी अकल समझ सोचने समझने की सलाहियतें, उसका अशरफुल मखलूकात होना, उसका खड़ा होना, उसकी उसका मसूदे मलाइका होना, ये सब चीजें हमें बताती हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी इज्जत दी है। तो अपनी इज्जत खुद अपने हाथों से ना गंवाए, अपने मकाम से खुद ना गिरे, और ना ही इंसान इंसानों को ऐसे अलकाबात ऐसी बातें और ऐसी नाम दे के उनको उनकी इज्जत के मकाम से गिरा दे, क्योंकि अल्लाह ने उसको इज्जत अता फरमाई है। अल्लाह ताला हमें इन आयात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात और रह गई, ये जो पीछे 68-69 आयत में हमें कहा गया कि क्या तुम बेखौफ हो गए हो इन चीजों से कि ये तुम्हारे ऊपर आ सकती हैं, तो इसके अंदर मैं आपसे ये कहूंगी कि आफियत की दुआ जरूर मांगा करें कि अल्लाह ताला हमें आफियत दे। आफियत का मतलब क्या होता है कि सलामती, जो चीजें भी नेगेटिव हैं, जो चीजें भी शर की हैं, चाहे जो यहाँ पे बताई गई हैं, तूफान है, पत्थरों की बारिश है, जलजले हैं, जमीन में धस जाना है, या कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई गम, कोई नागहानी आफत, कोई हादसा, उच्च तरह की इतनी जबरदस्त ये दुआएं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियत फी दुनिया वल आखिरा, ये इतनी प्यारी बात है, क्योंकि आपसे सब ने फरमाया अपने लिए आफियत मांगा करो, हजरत इब्ने अब्बास से फरमाया था, उन्होंने कहा मुझे कोई दुआ सिखा दें, आपने फरमाया आफियत की दुआ मांगा करो, तो उन्होंने आफियत की दुआ मांगी, फिर उन्होंने कहा ये तो बड़ी छोटी सी दुआ है, तो मुझे कोई और बताए ना कोई बड़ी दुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको आफियत मिल गई तो इससे बढ़ के कोई और चीज नहीं, यानी तुम सब कुछ दे दिए गए, अगर आप गौर करें ना इस दुआ में तो आपको हर किस्म के शर से, हर किस्म की परेशानी से, हर किस्म की बदअमनी, जादू टूने, कुफर शिर्क बिदत फितने परेशानियां नागहानी आफतें जलजले, हर मैं कहती हूँ हर चीज, बीमारियां, सबसे आपने सलामती मांग ली, सबसे सलामत रखना अल्लाह हमें, और अगर कोई चीज आ गई है तो उससे निजात दे देना, मतलब कोई बीमारी आ चुकी है तो आफियत में ये भी है कि अल्लाह इसे निजात दे दे, मुझे आफियत दे दे इससे, तो या औलाद के कोई मसाइल हैं कुछ, उन सब में आफियत। इसलिए कि देखें ये जो हमें यहाँ पे बताया गया ना कि अगर पत्थरों की बारिश हो जाए तुम्हारे पर, अगर तुम्हारे पर ये तो तुम इससे बेखौफ हो गए, ये क्या है मुसीबतें हैं बड़ी बड़ी, तो कभी ये मुसीबतें तो नहीं होती, लेकिन जिंदगी में वैसे पत्थरों की बारिश होने लगती है, जिंदगी में वैसे ही तूफान आ जाते हैं, कैसे कोई बीमारी एकदम अचानक आ गई, बैठे बिठाए कोई पता ही नहीं था, किसी की ऐसी कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, किसी के साथ किसी अचानक मौत हो गई, ऐसी चीजें हो जाती हैं, औलाद के कोई ऐसे मसाइल सामने आ गए जो इनको सोचा भी नहीं था कभी, तो ये भी तो जिंदगी के तूफान है ना, ये भी तो जिंदगी की ऐसी चीजें हैं जो जिनसे इंसान संभल नहीं पाता, तो अगर हम ये दुआ कर लेते हैं ना तो हम इन चीजों से सलामत रहेंगे, फिर तो अल्लाह ताला हमें जिंदगी के तमाम ही तूफानों से महफूज रखे। سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه سنيه.
واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً.